आज के इस रविवार शिक्षण कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम ये जो विशेष पुण्य पे देख रहे हैं, शायद ये राधारास भैरव मंदिर के इतिहास में पहली बार होगा कि एक कार्यक्रम, सत्संग कार्यक्रम एक मूवी के आधार पर रख रहा है। जो ये रोमा रिकॉर्ड मूवी है, उसके मैंने एक छोटी सी किताब लिखी है, जिसमें से 32 सवालों का जवाब मैंने उस किताब में दिया है। तो आज के प्रवचन में ओ माय गॉड जो मूवी थी, उसमें से जो एक गांधी भाई का जो टीवी टॉक शो है, उसमें कई सवाल उनको पूछे जाते हैं, वो जवाब देते हैं। तो वो मेरे किताब का मेरा नाम यह है री आंसरिंग द क्वेश्चंस, वो सवालों का पुनः जवाब देना। तो जो इस चित्रपट में जो उत्तर दिए हैं, वो वास्तव में आधे उत्तर है, आधे होने के कारण कई जगह में वो उचित नहीं है। तो मैं वो टीवी टॉक शो अभी दिखाऊंगा और उसके लिए थोड़ा थोड़ा सवालों का जवाब जैसे वो देते हैं, उसको मैं स्पष्टीकरण करूंगा और फिर अंत में हम समय रहेंगे सब प्रश्न उत्तर के लिए। आपके पास कोई सवाल है तो उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रवचन है समझने के लिए, अगर आपने ओ माय गॉड मूवी देखा है नहीं देखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मुद्दे है वह उस मूवी से अभिन्न है, भिन्न है और महत्वपूर्ण है सबके लिए समझना। तो यहाँ पे उस मूवी में जो सवाल पूछते हैं उसको हम देखेंगे। फिर चलो आगे बढ़ते हैं। डू वी हैव अ सॉरी डू वी हैव ऑडियो कॉल?
नहीं।
ओह, वी हैव टू यूज दैट। सही नहीं लगता है कि भगवान हमारे परम पिता के समान है, पर जब हम भगवान से संबंध जोड़ते गए तो संबंध अलग अलग स्तर पे होते हैं, और किस स्तर पे हम संबंध जोड़ रहे हैं उसके अनुसार हम क्या मांग रहे हैं उसका फैसला होता है। तो आचार्य बताते हैं कि कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लामिक धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, इनमें लोग भगवान के पास चार स्तर में जाते हैं। पहला स्तर है भय का स्तर। भय, अगर मैं भगवान के आदेश का पालन नहीं करूंगा तो भगवान मुझे सजा देंगे, शायद मैं धर्म का उल्लंघन करूंगा तो मुझे कुछ दुख हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, नरक में जा सकता हूं, ये भय का स्तर है। और एक तरह से ये भी अच्छा है, क्योंकि अगर घर में कोई छोटा बालक है, बहुत नादानी कर रहा है, तो अपने माता पिता का थोड़ा भय होगा तो अच्छा है, पर जो भय है यह अपने पिता के साथ के संबंध की तो शुरुआत है। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर छोटे बालक को अपने पिता का भय करना है। तो बाइबल में बताया गया कि फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, कि भगवान का भय यह बुद्धिमत्ता की शुरुआत है, पर बुद्धिमत्ता का अंत नहीं है, उससे और ऊंचा स्तर है। तो ये पहला स्तर है भय का स्तर, कि भगवान को सजा देंगे इसीलिए मैं उनके आदेश का पालन करना चाहिए। दूसरा स्तर जो है वह है इच्छा का स्तर, मतलब कि मुझे कुछ चाहिए इसीलिए वो मांगने के लिए मैं भगवान के पास जाऊं, भगवान मुझे वो दे देंगे। तो अगर इस इच्छा से हम जाते हैं भगवान से धंधा करने के लिए, तो भगवान को सौदा भी मंजूर है, उसी तरह भगवान किसी किसी हमारे पास आ रहे हैं, ये अच्छी बात है, और भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे भी क्या होता है, भगवान से प्रेम का संबंध नहीं है, वो है धंधे का संबंध है, बिजनेसमैन का संबंध होता है, वैसे संबंध नहीं। और इस स्तर पे अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो लोग कई बार नास्तिक बन जाते हैं, मैंने एक दिन पूजा पाठ की और कुछ भी फल नहीं मिला। और वास्तव में कैसे है, अगर एक विद्यालय है उसमें एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है और सब आके प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मुझे पहला क्रमांक मिलना चाहिए, तो ये संभव नहीं है कि सबको पहला क्रमांक मिल सकता। तो इस भौतिक जगत में सबकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। तो दूसरा स्तर जो है इच्छा का स्तर है, इच्छा के स्तर पे मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं भगवान के पास जाता हूं, और यह तो सकारात्मक है, हम डर नहीं रहे भगवान से, पर फिर भी यह प्रेम का संबंध अभी तक नहीं है, धंधे का संबंध है, उसके ऊपर है कि कर्तव्य का संबंध, कर्तव्य बुद्धि। उसमें हम समझते हैं कि भगवान इच्छा के समय हम चाहते हैं कि भगवान मुझे ये दे वो दे वो दे इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूं, पर कर्तव्य के स्तर पे हम समझते हैं कि भगवान ने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है और इसीलिए मैं उनके कृतज्ञ हूं, इसीलिए उनकी सेवा करना है मेरा कर्तव्य। तो भगवान ने मुझे क्या दिया है पहले से, कई बार लोग कहते हैं कि ऐसे पूजा पाठ करने से मेरे घर के किचन में अन्न नहीं आने वाला है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है अन्न पदार्थ अन्न कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फिर अन्न आता है। ये एक तरह सत्य है पर ये पूरा सत्य नहीं है, क्योंकि हम हमारी मेहनत से केवल खाना नहीं उत्पन्न कर सकते, जो अन्न है वो निसर्ग से आता है। हमारा कितना भी विज्ञान प्रगतिशील क्यों हो, विज्ञान ने एक भी फूड प्रोडक्शन यूनिट नहीं बनाया है, सारे यूनिट है वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। फूड प्रोडक्शन मतलब अन्न की उत्पत्ति, हम क्या कर सकते हैं हमारे विज्ञान से, सारे फैक्ट्रियों से अन्न का परिवर्तन कर सकते हैं। अन्न की उत्पत्ति केवल निसर्ग से होती है, निसर्ग की जो फैक्ट्री है उसके मालिक भगवान है, तो हम सब भगवान पे ही निर्भर है हमारे अन्न के लिए। हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, पर यह मेहनत द्वितीय है। जिस तरह से रोज सुबह पंछी उठते हैं और पंछी उठ के वो ढूंढने लगते हैं मुझे आज अनाज कहाँ मिलेगा, खाने को कहाँ मिलेगा, और वो इधर उधर जाके ढूंढते हैं। जब ये ढूंढते हैं तो उनको मेहनत करनी पड़ती है, पर उनके ढूंढने से अनाज की उत्पत्ति नहीं होती है। भगवान पहले से अनाज की उत्पत्ति करके रखते हैं, इधर उधर कहीं अनाज गिर जाता है और पंछी अपने प्रयास से ढूंढ के उसको प्राप्त करते हैं। तो इसलिए पंछियों का जो खोजना है अन्न के लिए वो द्वितीय है, और प्राथमिक क्या है, भगवान अनाज की योजना कर। उसी तरह से हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, पर हमारे मेहनत से अन्न उत्पन्न नहीं होता, तो दोनों महत्वपूर्ण है।
तो ये कर्तव्य की बुद्धि है, इससे हम समझते हैं वास्तव में विज्ञान के द्वारा हम भगवान हमारे लिए कितना करते हैं वह और भी समझ में आता है। कैसे क्या? अभी हम भगवान न केवल हमको अन्न देते हैं निसर्ग के द्वारा, पर भगवान ही हमारा अन्न पचाते हैं। वास्तव में हमारी पचन क्रिया जो है उसके बारे में हम कभी विचार ही नहीं करते जब तक वो काम नहीं करती, और जब वो काम नहीं करती तो वो हमें काम पे लगा देती है, ये दवाई लो, ये डॉक्टर के पास जाओ, ये करो वो करो। पर वास्तव में जो पचन होता है वो बहुत विलक्षण कार्य है। अभी आजकल डॉक्टर लोग होते हैं वो किसी को कुछ अगर हाथ खराब हो गया तो नकली हाथ लगा देते हैं, अगर वास्तव में हृदय काम नहीं कर रहा है तो पेसमेकर डाल देते हैं, किडनी काम नहीं कर रहा है तो डायलिसिस के लिए इंग्रेड लगा देते हैं। तो संशोधक अभी प्रयास कर रहे हैं कि बहुत लोगों को पचन क्रिया की समस्या आती है, तो क्या कर सकते हैं हम? अगर किसी को पचन नहीं हो रहा है तो हम एक पचन करने वाला एक मशीन पेट में डाल देंगे, तो फिर जो भी खाना है बच जाएगा। तो ऐसा संशोधन करने का वैज्ञानिक प्रयास किया और देखा कि पचन क्रिया इतनी जटिल है, इतनी मुश्किल है कि उसके लिए एक मशीन चलेगा नहीं, एक फैक्ट्री लगेगी, और फैक्ट्री भी 2 मील लंबी फैक्ट्री लगेगी। तो अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गया, थोड़ी कम हो जाएगी फैक्ट्री की लंबाई, पर फिर भी बहुत लंबी फैक्ट्री लगती है। और फिर वो है कि वो पचन करते हैं हम तो इतनी मेहनत होती है उसमें। मान लीजिए अगर मैं 10 किलो का वजन है उठा के ले जा रहा हूं, तो मेहनत हम काम कहते, काम कर रहे हैं मतलब क्या, बड़ा वजन है और बड़े अंतर तक लेके जाना है। उसी तरह से हम एक हाथ भर के खाना भी खाते हैं तो उसका जो पचन होता है तो वह जिह्वा से पूरे जो शरीर से निकलता है उसमें जो मेहनत होती है वो मेहनत इतनी होती है कि साधारण आदमी वो दिन भर में उतनी मेहनत नहीं करता है, उतने एक अन्न के घास को पचाने में मेहनत होती है। तो अभी ये मेहनत कौन कर रहा है? हम तो सिर्फ खाते हैं और भूल जाते हैं उसको। तो भगवद गीता में बताया गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणामान समाभियुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो पचन क्रिया है मैं योजना करता हूँ उसकी। तो वास्तव में कर्तव्य के स्तर पर हम समझते हैं कि भगवान ने पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप जानते हैं कभी कभी व्यक्ति अगर बहुत ही मृत्यु की शैया पे होता है तो कृत्रिम पद्धति से उसको जीवित रखते हैं, कृत्रिम ऑक्सीजन देते हैं या फिर उसका हृदय चलाते रखते हैं, किडनी चलाते रखते हैं, तो इस और वो बहुत खर्चा होता है करने में, कई बार एक दिन के लिए हजारों रुपए लग जाते हैं। तो संशोधन वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है कि हम तो सिर्फ कुछ ही प्रक्रिया चालू रख सकते हैं, अगर सांस नहीं ले रहा है तो सांस ले सकते हैं, किडनी काम नहीं कर रहा है तो किडनी काम करवा सकते हैं। तो अगर काल्पनिक रूप से अगर ऐसे करेंगे कि हम कृत्रिम पद्धति से शरीर की सारी यंत्रणाओं को चलाने का प्रयास करेंगे तो एक दिन इस शरीर को चलाने के लिए 50 लाख रुपए लग जाएंगे। तो मतलब हमारा शरीर कौन चला रहा है? हम तो नहीं चला रहे। तो भगवान हर रोज हमारे लिए 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और हम कहते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। तो वास्तव में कर्तव्य के स्तर पर हम समझते हैं कि भगवान पहले से मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें कृतज्ञ होना चाहिए। और उससे ऊपर का स्तर है प्रेम का स्तर। हम समझते हैं कि वास्तव में भगवान ही मेरे आराध्य देव है, मेरे प्रेम के सबसे सर्वोच्च पात्र व्यक्ति है, और मैं उसकी भक्ति ये कुछ भय के कारण नहीं कर रहा हूँ, कुछ इच्छा के लिए कारण कर रहा हूँ, मैं उनके प्रेम के लिए कर रहा हूँ, और यह सर्वोच्च स्तर है और इसके द्वारा हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। हम यहाँ से भगवत धाम लौट जाते हैं और वहां पे हम परम आनंद प्राप्त करते हैं और वास्तव में हम वहीं पर रहते हैं। तो अभी ये 4 स्तरों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ?
तो हम जो है भगवान से संबंधित है पर हम भगवान से संबंध भूल गए हैं। कभी कभी आपने टीवी सीरियल में या मूवीज में देखा होगा कि कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई का पहाड़ से गिर जाता है, वो तो कार से जा रहा है, पहाड़ से कार गिर जाती है नीचे, और फिर जब नीचे गिरती है तो कैसे बच जाता है और नीचे एक खाई है, और फिर जब गिरता है तो उसको याददाश्त चली जाती है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कोई बहुत अमीर राजकुमार है, वो नीचे से गिर जाता है पहाड़ से और एक खाई में गिर जाता है, और जहां पे खाई में कुछ आदिवासी लोग है वो उसको बचा लेते हैं, वो कोई घास को अगर गिर जाता है तो बेहोश हो जाता है, सिर पे चोट लगती है, फिर होश में आता है, उसको पूछते हैं और ठीक हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम याद नहीं मुझे, मेरा नाम क्या है? क्या होता है वो व्यक्ति भी याददाश्त चली जाती है, और अभी जब याददाश्त चली जाती है तो क्या करेगा, पता नहीं कहां से आया है, तो वो आदिवासी लोगों से कहते हैं ठीक है तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ ही तुम जियोगे। तो फिर उसको बोलते हैं ये अभी आप जंगल में जाओ और ये इसे लकड़ियां तोड़कर रोज लकड़ियां लेके आओ, और वो राजकुमार है पर बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, लकड़ियां उठा के ला रहा है, और फिर उसके पिता अपने घर में ही, मेरा पुत्र कहां चला गया, ढूंढ रहे हैं, और फिर वो यहाँ पे आते हैं इस ओ पहाड़ से नीचे उतर के इस ग्राम में आते हैं खाई में, और वो देखते हैं उनका पुत्र यहाँ पे बड़े बड़े वजन उठा के ले जा रहा है, और वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ, तुम जानते हो तुमको मुझे बहुत काम है, समय नहीं है मेरे पास। जैसे वो बोलते हैं तो फिर पिता क्या करते हैं कि डॉक्टर को लेके आते हैं, और आपको पता है किसी की याददाश्त चली गई है तो फिर क्या करते हैं, याददाश्त आने के लिए क्या करते हैं, शॉक तो एक बात है, वो दूसरा ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट क्या है, हाँ पुरानी चीज याद दिला देते हैं, ये घड़ी याद है तुमको, ये शर्ट याद है, ये बैग याद है, अलग अलग चीज याद कराते हैं, और उससे धीरे धीरे याददाश्त आ जाती है। वैसे ही तो भगवान क्या करते हैं, भगवान स्वयं अवतार लेके इस भगवान से हमारे यहाँ पे आते हैं, अगर यहाँ पे
याददाश्त दिलाने के लिए अलग अलग सुविधाएं देते, वो हमें बोलते हैं आप आ जाओ हमारे साथ, तो हम आने को तैयार नहीं होते, तो वे एक डॉक्टर को लेकर आते हैं, डॉक्टर है गुरु, उनके प्रतिनिधि है वो, और वे हमें उनकी याददाश्त दिलाने के लिए अलग अलग सुविधाएं देते हैं, और उनकी याददाश्त के लिए प्रधान सुविधा जो है वो उनका नाम है। तो जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं वह क्यों कर रहे हैं, वह हमारी याददाश्त पुनः जागृत करने के लिए। पर मान लीजिए ये छोटा ये लड़का है जो बोलता है मैं इतना बिजी हूँ, मुझे समय नहीं है, एक याद करना है, समय नहीं है, बहुत काम करना है, तो फिर जो डॉक्टर आएगा उनको बोलेगा ठीक है अगर तुम ये घड़ी की ओर देखोगे, अब कुछ याद आता है कि नहीं कुछ बोलोगे, 10 मिनट के लिए तुम घड़ी की ओर देखो, मैं तुमको एक चॉकलेट दे दूंगा, ठीक है। अभी उसकी दृष्टि से क्या है, वो घड़ी की ओर देखना महत्वपूर्ण नहीं है, उसको चॉकलेट चाहिए, और चॉकलेट के लिए वो सब कर रहा है, पर डॉक्टर की दृष्टि से, पिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, वो याददाश्त। तो ठीक उसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम जब हमें साधारण पिता पे आता है, साधारण पिता अगर हमें कुछ याददाश्त पुनः जागृत नहीं करनी है तो इसीलिए उनके नाम का जप करने की जरूरत नहीं है, और जब भगवान के पास जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें याददाश्त पुनः जागृत करनी है। तो जो लोग याददाश्त पुनः जागृत करने के लिए उनको रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है, उनको शास्त्र बताते हैं ठीक है आप जप कर लो आपकी बीमारी चली जाएगी, आप जप कर लो आपको ये मिल जाएगा, आपको वो हो जाएगा, वो सब क्या है, बाह्य फल है, अंतरंग फल जो है, महत्वपूर्ण फल जो है वो याददाश्त की पुनः जागृति करना है। तो इसीलिए हम भगवान के नाम का जप क्यों करते हैं, कि ऐसे नहीं है कि भगवान है, भगवान एक साधारण पिता है, बहुत दिव्य पिता है, और उनको हम भूल गए, तो हमारी याददाश्त पुनः जागृत करने के लिए हम भगवान के नाम का जप।
छोटी बच्ची तो अपने पापा से चॉकलेट मांग, मैं क्या क्या करती, ये है कि दुनिया में उन्होंने मुझे बचपन से समझाया कि भगवान तुम्हारे पास के समान है,
तो यह एक बात है कि लोग कहते हैं कि भगवान मेरे सामने क्यों नहीं आते। तो वास्तव में इसके जवाब कई स्तर पर दिए जाते हैं। सबसे पहला स्तर है कि अगर यही स्तर है मैं किसी चीज में विश्वास करने के लिए, भगवान मेरे वो वस्तु मेरे सामने आएगी तो मैं ही मैं विश्वास करूंगा, तो फिर हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं आपको बीमारी हुई है। क्या बीमारी हुई? मलेरिया हुआ है। मलेरिया क्यों हुआ है? आपके इसमें जंतु आ गए। जंतु दिखा मुझे तब तक इन दवाई में विश्वास नहीं करूंगा और मैं दवाई नहीं लूंगा। कोई करता है ऐसे? कोई नहीं करता है ऐसे। और वास्तव में हम कितने जगह में हमारे जीवन में देखने के बाद ही श्रद्धा करते हैं। वास्तव में हम देखते हैं डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये जंतु है यहाँ पे, आप ये दवाई लो ठीक हो जाओ, और ठीक हो गए तो मान लेते हैं। वैसे ही भगवान में श्रद्धा रखने के लिए भगवान को देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, हमारे जो काम क्रोध चला जाता है, जीवन हमारा प्रसन्न हो जाता है। अगर परिवर्तन से हम समझाते हैं कि भगवान है और भगवान मेरे सामने आ गए, ये मान करना वास्तव में एक अहंकार का लक्षण है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे को, अगर कोई एक छोटे मैं छोड़िए अगर कोई आदिवासी लड़का है कोई छोटे ग्राम में रह रहा है जंगल में और उसको बताया कि भारत के एक राष्ट्र प्रधानमंत्री है, मैंने तो कभी देखा नहीं प्रधानमंत्री को, और वो कहता है हाँ प्रधानमंत्री है। अगर प्रधानमंत्री है वो सारे भारत के नेता है तो मैं 10 बोलूंगा, 10 बोलने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे आने चाहिए, और नहीं आएंगे तो प्रधानमंत्री नहीं आ सकते। तो वो लोग बोलेंगे प्रधानमंत्री का अस्तित्व छोड़ो, तुम्हारे बुद्धि का अस्तित्व नहीं है, तो कौन ऐसे मांग कर सकता है भगवान के लिए। तो भगवान को हम देखना है तो हम बुद्धि से आसानी से उनके अर्थ को समझ सकते हैं, और जब शुद्ध हो जाएंगे आध्यात्मिक स्तर पर जाएंगे तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं।
तो मैं मानता हूं कि भगवान हमारे पिता का मान है, तो क्या वो मेरे सामने आएंगे? आप ये मंदिर मूर्ति वगैरह का मानते हैं तो वो तुम्हारे सामने नहीं आएंगे।
लेकिन क्यों?
क्योंकि आप उनको मंदिर मूर्ति में मान रहे हो, तो उनको अनुभव होने की क्या जरूरत है?
तो ये कई बार लोग कहते हैं कि मंदिर मूर्ति में आपको क्यों देखना है भगवान को, वो कहते भगवान सब जगह पे है। तो अगर भगवान सब जगह पे है तो क्या वो मंदिर में नहीं है? कि सब जगह पे है सिर्फ मंदिर में नहीं है, ऐसे तो नहीं है। अगर सब जगह पे है तो मंदिर में भी है, और भले ही भगवान सब जगह पे है क्या हम उनका अस्तित्व सब जगह पे महसूस कर सकते हैं? अभी आपको थोड़ा विज्ञान पता है तो पानी जो होता है सब जगह पे होता है, पानी एक वाफ के रूप में हवा में भी होता है, पर मुझे जब प्यास लगती है तो मुझे मेरी जिह्वा बाहर हवा से पानी नहीं मिल सकता है। अगर मुझे चाहिए तो मुझे वो हवा में जो पानी है उसको एक यंत्रणा के द्वारा नल के द्वारा ग्लास में चाहिए पानी। इस तरह से भगवान सब जगह पे है, पर क्या सब जगह पे मैं भगवान के अस्तित्व को महसूस कर सकता हूँ? नहीं। तो इसीलिए जहां पे हम भगवान के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं वहां पे जब हम जाते हैं तभी हमारी भक्ति में प्रगति होती है। और उसी तरह अगर मैं कल्पना करूं जहां पे भी हमें भगवान देख रहा हूं तो वास्तव में हमारी आध्यात्मिक प्रगति केवल काल्पनिक रहेगी। और ये सत्य है कि अगर जहां पे हमें भगवान के अस्तित्व महसूस होता है वहां पे हम जाते हैं, विग्रहों में भगवान का दर्शन करते हैं, उसके बाद हमारी भगवत चेतना बढ़ती है और बाकी जगह पे भी हम भगवान के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। पर शुरुआत कहां से होती है? पहले जहां भगवान का अस्तित्व महसूस हो रहा है वहां पे हमें देखना चाहिए। तो भगवान जरूर सब जगह पे है पर हम देख सकते हैं उनको विग्रह हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का लाइन सब जगह पे होती है, पर मुझे कहीं से भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मैं सीधा जाकर इलेक्ट्रिसिटी के लाइन को स्पर्श नहीं कर सकता, वहां मुझे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, शॉक मिल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं मेरे मनमानी पर से वो सब जगह पे भगवान है तो फिर हम भगवान के अस्तित्व को महसूस नहीं कर पाए। तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का एक रूप है और वो वर्णन किया है जो महान संतों ने दिव्य दृष्टि से भगवान का दर्शन किया है उन्हें उसका वर्णन शास्त्रों में किया है। और जब उसके अनुसार हम भगवान के विग्रह बनाते हैं तो उसके दर्शन से हमें भगवान की भक्ति में वृद्धि होती है, उससे हम भगवान का अर्थ महसूस कर सकते हैं और शुद्ध होते हैं, फिर सब जगह हम भगवान को देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? बहुत फास्ट चल रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ बता रहे हैं कि वो सवाल पूछते हैं कि भगवान के अस्तित्व का सबूत क्या है, कि मैंने जाके पूजा, मैंने भगवान से कहा कि बालाजी से जाकर कहा कि मुझे नौकरी दे दो, और नौकरी दे दी इसलिए मुझे ने बाल काट दिए, उनको बाल अर्पण दिए। तो बोलते हैं कि अगर दरवाजे के सामने, अगर हमारे घर के सामने कोई बाल ला के रख देता है तो हमें बुरा लगेगा, तो वैसे भगवान को ये उनके घर के सामने बाल ला के रख दिए तो उनको बुरा नहीं लगेगा? तो वास्तव में भगवान बाल अग्रही नहीं है, भगवान भाव अग्रही है। जो भगवान है वो बाल नहीं देखते हैं, बाल के पीछे क्या भाव है वो देखते हैं। और बाल के पीछे भाव क्या है? वास्तव में हम जो प्रेम अर्पण कर, प्रेम किसी के लिए व्यक्त करना है, तो प्रेम व्यक्त करने की दो पद्धतियां हैं। एक है उस व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, और दूसरा है उस व्यक्ति के लिए हम क्या त्यागते हैं। मान लीजिए अगर कोई बालक है, बालिका है, और वो बोले कि माता पिता मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो माता पिता कहेंगे बेटा बेटी आपके लिए एग्जाम आ रही है तो आप पढ़ाई करो, तो मैं आपसे प्रेम करता हूँ पर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। तो नहीं, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, तो एक किसी प्रेम दिखाते हैं। तो उसी तरह से अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम उनके सत्संग में आते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका जप करते हैं, एक तरह से भगवान को प्रेम दिखाते हैं। पर दूसरा क्या है, अगर माता पिता बोलते हैं कि अभी हम जानते हैं कि आप अभी आपके इम्तिहान आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा खेलकूद करो ना, तो मान लो बालक अपना प्रेम कैसे दिखाता है माता पिता, तो वो खेलकूद को त्याग दे, तो त्यागना भी एक तरह से प्रेम का लक्षण। तो उसी तरह से अगर हम भगवान को हमारा प्रेम दिखाना चाहते हैं तो कुछ चीजों को त्यागने से भी हम हमारा प्रेम दिखाते हैं। तो क्या चीजों को त्यागना है? जो चीजें हमें भगवान से दूर ले जाती है, जो चीजें हमें भगवान की विस्मृति कराती है, हमारी इच्छा है कि भगवान की स्मृति पुनः जागृत कर, तो जो चीजें हमें भगवान की विस्मृति कराते हैं, भगवान से भुला देते हैं, वह त्यागना यह भी एक भक्ति का लक्षण है। और फिर शास्त्र में बताया गया है और हमारे अनुभव से भी हम समझ सकते हैं कि एक चीज जो हमें बहुत शारीरिक चेतना में डाल देती है वो है हमारे बाल। लोग बाल के इतना समय डालते हैं, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। पर महाराज कहानी बताते हैं कैसे कि वो एक बिल्डिंग में थे, वहां पे जो लिफ्ट था बहुत स्लो था, आपको पता होगी कहानी बताई हो पहले, तो लिफ्ट बहुत स्लो था, तो मालिक को सारे जो लोग उस बिल्डिंग में थे वो पोसते थे आके अच्छा मशीन लगाओ यहाँ के और लिफ्ट को और फास्ट बना दो। तो मालिक कंजूस था, वो कहता क्यों इतना पैसा खर्च करे, तो क्योंकि नया मशीन लगाया, तो उसने दूसरा योजना बनाया। क्या योजना बनाया कि वहां पे लिफ्ट के तीनों जो दीवार थे उसको आईने में परिवर्तित कर दिया। अब क्या हो गया, लोग जैसे ही लिफ्ट में आते तो आईना देखते तो एक हाथ बाल पे, दूसरा हाथ जेब में कंघी पे, और फिर अपने बाल संवार लेते थे और भाई सारा कंप्लेंट बंद हो गया, सारा शिकायत बंद हो गया। तो यहाँ पे कहने का भाव क्या है कि जो बाल है वह उसके उसके यहाँ इतना मन लग जाता है कि उससे बाकी सब चीज भूल जाते हैं। तो शास्त्र में बताया गया लावण्यम केश धारणम, कलयुग में बाल कैसे है उसको ही व्यक्ति के सौंदर्य का लक्षण माना जाता है। तो इसीलिए कभी क्या है, हम आत्मा है और आत्मा के स्तर पे हमारा भगवान से संबंध है, जहां तक हम खुद को शरीर मानते हैं और शरीर के स्तर जीते हैं तब तक हम भगवान को भूल जाएंगे। तो इसीलिए बाल को काटना, बाल को त्यागना, यह शारीरिक चेतना से मुक्त होने के लिए एक विधि बताई गई और यह हजारों हजारों सालों से चल रही है कि कोई भी अभी कुछ जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं वो हमेशा के लिए बाल त्याग देते हैं, पर जो बाकी सब लोग होते हैं वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं जैसे पीढ़ी ऐसी पद्धति है तो कभी बाल काट देते हैं। तो वही पद्धति बालाजी में है, बालाजी तिरुपति में जाते हैं तो लोग बाल काटते हैं। तो अभी जब लोग बाल काटते हैं तो भगवान वहां पे काले बाल, सफेद बाल, लैंडर वाले बाल नहीं देखते। भगवान वहां पे वो जो त्याग, श्रद्धा, भक्ति का भाव है वो भाव देखते हैं। इस दुनिया में हमसे होता है उसको अगर दूध और पानी मिलकर कह देते हैं तो वो दूध देता है और पानी को बाजू में रख देता है। तो भगवान तो राज हमसे है, तो बालों के द्वारा अगर उनको भक्ति अर्पण करते हैं तो भगवान बाल बाजू में रख देते हैं, भक्ति स्वीकार करते हैं। तो इसलिए जो रीति रिवाज है उनको समझने के लिए जो हंस जैसे भक्त है उनके सामने जब आते हैं तो समझ सकते हैं कि भगवान का क्या भाव है उसके पीछे।
अमेरिका, लंदन जैसे विदेशों में बेचे जाते एक शॉर्ट में घर आपकी श्रद्धा का वहां अंधा होता है, लंदन में
करेगा। तो कह रहे हैं कि बालों को बेच के क्या करते हैं, श्रद्धा का धंधा होता है। तो अभी ये इस तरह से बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये रीति रिवाज इसीलिए चालू किए गए हैं कि बालों को बेच के धंधा किया जाए, पर ये जो रीति बाल काटने का रीति जो है ये कांजी भाई के दादा के दादा के दादा के दादा के समय से चली आ रही है, हजारों सालों से चली आ रही है। तो आजकल के आधुनिक समाज में ऐसे ऐसे लोगों की रहन शैली हो गई है, लोगों की स्टाइल में इतना हेयर स्टाइल में इतनी आसक्ति हो गई है कि लोग खुद के लिए बाल कम हो गए तो विग्स बनाना चाहते हैं, कृत्रिम बाल बनाना चाहते हैं और उसके लिए कटे हुए बाल तो उनको चाहिए। तो हजारों सालों से जो बाल काटे जाते हैं उनको कचरे में फेंका जाता है। तो अगर कलयुग में ऐसी नीति ऐसी वृत्ति आ गई है कि वो बाल जो कचरे में फेंके जा रहे हैं उससे अगर पैसा कमाया जा सकता है और वो भगवान की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें बुरा क्या है? यह श्रद्धा का धंधा नहीं है, यह वेस्ट का धंधा है। जो वेस्ट में जा रहा है वह अभी उससे पैसे उत्पन्न करके उसको उपयोग किया जा रहा है। और अगर धंधे की बात है तो ओ माय गॉड जो मूवी था उसको 20 करोड़ के बजट में बनाया और उसका प्रॉफिट हुआ 80 करोड़। वो 60 करोड़ से किसी का कुछ कुछ भिखारी कुछ खाने को दिया, कुछ अनाथालय के लिए कुछ किया नहीं। तो ये मूवी क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं श्रद्धा का धंधा, पर खुद कर रहा है श्रद्धा की निंदा का धंधा। कभी कई बार क्या होता है जब तर्क वितर्क होता है तो गलत उदाहरणों से लोगों को फंसाया जाता है। तो अभी यहाँ बताया जा रहा है कि कई बार जो मंदिरों में रोशन आता है उससे अनाथालय चलता है, अस्पताल चलता है। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे है कि जो गुटखा बेचते हैं वही अस्पताल चालू कर रहे हैं। अभी इसका संबंध क्या है? क्या धर्म के कारण है, मंदिरों के कारण लोग अनाथ बन रहे हैं? क्या उसके कारण लोग भूखे बन रहे हैं? क्या उसके कारण है सारे समस्या समस्या आ रही है? नहीं, जो गुटखा बेच रहे हैं वही बीमारी कर उत्पन्न कर रहे हैं और फिर अगर वो अस्पताल खोलते हैं तो वो पाखंड है। पर वास्तव में धर्म कोई समस्या नहीं करता है, इसलिए उदाहरण पूर्णतः गलत है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये लोग काला पैसा कमाते हैं ब्लैक मनी और उसको डोनेशन में दे देते हैं। तो वास्तव में इसका धर्म और मंदिर से क्या लेना देना है? अगर कोई स्कूल में जाता है और स्कूल चला रहा है तो क्या पैसा काला है क्या पैसा सफेद है, यह जांच करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई पाठशाला चला रहा है, पाठशाला को चलाने के लिए कोई मदद करता है, तो पाठशाला के अधिकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि पैसा कहां से आया है। अगर मान लीजिए कोई मंदिर में आता है और मंदिर में कोई हुंडी में 5 रुपए डाल रहा है, तो उसको हम क्यों रखेंगे, काला पैसा है सफेद पैसा है, पूछ नहीं सकते। पर प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है कि जो भी धन जो डोनेशन देता है उसको हमें भी कुछ देना चाहिए। और क्या है, हम क्या देते हैं, ग्रंथ देते हैं, ज्ञान देते हैं। और वास्तव में अगर वो ज्ञान स्वीकार करता है तो उससे वो समझ जाएगा कि मुझे अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्यों ब्लैक पैसा है वो नहीं करना चाहिए। पर जो जिम्मेदारी है इसके लिए, ये जिम्मेदारी धर्म की नहीं है, मंदिरों की नहीं है। तो जो लोग अगर दान देना चाहते हैं, वो दान देने का उद्देश्य क्या है कि ये धंधा नहीं है। क्या होता है, धर्म का उद्देश्य है अंत में कि हमें हमारा हृदय भगवान को अर्पण करना है, भगवान के भक्त बनना है, भगवान को प्रेम करना है। पर क्या है, हमारा हृदय इस दुनिया के बहुत से चीजों में लगाया हुआ है। तो शास्त्र कहते हैं ठीक है, अगर आप अपना हृदय अर्पण नहीं कर सकते भगवान को, तो हृदय में जो है वो अर्पण कर दो भगवान। हृदय अर्पण नहीं कर सकते तो हृदय में जो है वो अर्पण कर दो। हृदय में क्या है, धन से आसक्ति है, तो धन जब अर्पण करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे हम भगवान को हमारे हृदय में एक जगह देते हैं और उससे हमारे भक्ति में प्रगति होती है। तो इसीलिए ये यहाँ पे जो शास्त्र है आचार्य है वो क्या बताते हैं कि सबका किसी न किसी तरह कल्याण हो जाए। तो कोई अगर गुनाह भी कर रहा है तो ऐसे नहीं कि धर्म उसको गुनाह करने को बोल रहा है, मंदिर उसको गुनाह करने को बोल रहा है, वास्तव में वह थोड़ी तो भक्ति में शुरुआत हो जाए इसीलिए उसको भी भगवान की सेवा करने का मौका है। वो कैसे भी पैसे कमाए वो भगवान को दे सकता है। पर अगर वो भगवान के भक्तों के संबंध में आता है तो भक्तों को ज्ञान देते हैं किस तरह से आपको जीवन जीना है, और फिर वो अनैतिकता से नैतिकता तक भी आ जाए। तो इस तरह से वो एक प्रगतिशील क्रियाशील विधि है जिससे कि सब लोगों की प्रगति हो सकती है। तो अभी यहाँ पे वापस एक गर्व उदाहरण दिया जा रहा है। कहते हैं कि जैसे कोई गुंडे होते हैं वो बंदूक दिखाते हैं, कहते हैं हफ्ता दो। ऐसे लोग कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहते हैं आप रीति रिवाज करो, आपको शनि लग गया है, मंगल लग गया है, आप रीति रिवाज करो और उससे पैसा कमा लेते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो अभी यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, जो गुंडे होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हम ज्योतिष के पास जाते हैं। फर्क क्या है दोनों में कि अगर जो गुंडे जोर जबरदस्ती से करते हैं, अगर हमारी श्रद्धा है तो हम धर्मधार्मिक लोगों के पास जाएंगे। और वास्तव में दूसरा एक महत्वपूर्ण फर्क ये भी है कि अगर वो गुंडों की बात नहीं मानेंगे, हम उनको हफ्ता नहीं देंगे, तो वो खुद ही हिंसा करेंगे, वो ही हमारे लिए समस्या क्रिएट कर समस्या बनाएंगे, पीटेंगे, उद्वस्त करेंगे। पर ऐसे नहीं है कि अगर हम धर्म के पास कोई पुजारी के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, ऐसे नहीं है कि वो हमारे सारी समस्या निर्माण कर रहे हैं। तो वो समस्या निर्माण नहीं कर रहे हैं, जो समस्या पूर्व से है वो हमें बता रहे हैं। ऐसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा जन्म होता है तो उसको डॉक्टर बोलते हैं, माता पिता को बोलते हैं कि ये शिशु है, उसको जन्मजात उसके हृदय में कुछ विकार है। तो अभी डॉक्टर जो कर रहे हैं, क्या डॉक्टर समस्या निर्माण कर रहे हैं? डॉक्टर जो समस्या पहले से अस्तित्व में है डॉक्टर उसके बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई एक पहाड़ी रास्ते पे जा रहा है और वहां पे एक निशाना है कि तेजी से मत जाइए, यहां सीधा जाएंगे तो खाई है, गिर जाएंगे। तो अगर ये वार्निंग है, ये जो है चेतावनी है, तो चेतावनी और धमकी एक नहीं है। चेतावनी मतलब खतरा पहले से है और वो खतरे के बारे में जानकारी दी जा रही है। धमकी मतलब हम खुद खतरा निर्माण कर रहे हैं, व्यक्ति जो धमकी दे रहा है वह खुद खतरा में मान लगा। जो गुंडे है वह धमकी देते हैं, जो डॉक्टर है वो चेतावनी देते हैं। तो जो डॉक्टर जो है वह शारीरिक स्तर की जो बीमारी है उनके बारे में चेतावनी देते हैं। तो जो ज्योतिष है, जो शास्त्रज्ञ है, वह ग्रहों और कर्मों के डॉक्टर है, वो उसके बारे में जो बीमारियां हैं उसके बारे में चेतावनी देते हैं। तो इसलिए यह जो उदाहरण है पूर्णतः गलत है। और जहां तक इस तरह डराने की बात है, वो वहां पर उद्देश्य डराना नहीं है, चौकन्ना करना है। और ऐसे हो सकता है कि कुछ ज्योतिष ऐसे है जो भ्रांत रूप से ही लोगों को फंसाते हैं, ये करो, ये पूजा करो, ये पाठ करो, हो सकता है ऐसे। और उसके लिए क्या करना चाहिए, अगर ऐसे फंसना नहीं है तो हमें अच्छे से समझना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और उसमें क्या सत्य है क्या गलत है। अभी कुछ महीने पहले एक सत्यमेव जयते में आमिर खान का एपिसोड दिखाया था, कैसे जो डॉक्टर होते हैं कई बार डॉक्टर बेईमानी करते हैं और लोगों से बहुत पैसा ले लेते हैं। तो ये सत्य है कि ऐसे लोग हैं डॉक्टरों में भी जो बेईमानी करते हैं। पर अगर मान लीजिए उसके बाद में उस जो एपिसोड था वो उसका वो निष्कर्ष बोलते हैं कि क्या है, डॉक्टर बेईमान है, जो दवाई है वो भी फंसाती है, इसीलिए डॉक्टर के पास मत जाओ, दवाई मत लो, सेहत अच्छी है पर डॉक्टर और दवाइयां बुरे हैं, तो हम ऐसे जिंदगी से क्या फायदा होगा। तो उसी तरह से अगर कोई कहता है भगवान अच्छा है पर सारे धार्मिक गुरु है, धार्मिक शिक्षक है बुरे हैं, सारी रीति रिवाजें बुरी है, वो तो वैसे ही है, कहना सेहत अच्छा है पर डॉक्टर बुरे हैं, दवाइयां बुरी है। पर क्या संदेश दिया था उस कार्यक्रम में कि आप चौकन्ने रहो, सब लोग जो डॉक्टर है वो अच्छे ही ऐसे नहीं है, आप थोड़ी आपकी बुद्धि इस्तेमाल करो, अलग अलग थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करो मेडिकल शास्त्र के बारे में और फिर आप अच्छी तरह से डॉक्टर कौन है वो चुनो। तो उसी तरह से हम धर्म के मामले में कोई भी व्यक्ति कोई थोड़ा श्लोक बोल लेता है, कोई थोड़ा भगवे वस्त्र पहन लेता है, लंबी दाढ़ी रख लेता है, तो ऐसे नहीं है कि वो धार्मिक व्यक्ति है। हमें बुद्धिमत्ता से जांच करनी चाहिए। हमें भगवान के नाम का यज्ञ करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं वो यजन्ते नाम यज्ञ, वो केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, मतलब क्या दिखावे के लिए करते हैं, खुद को धार्मिक दिखाते हैं ताकि इसके द्वारा लोगों को फंसा सकते। तो हमें चौकन्ना रहे। तो ऐसे हो सकता है कि लोगों को कोई फंसाया जा रहा होगा, तो उसके लिए क्या शिक्षण चाहिए। ऐसे नहीं है कि सबको जो बुरा, सबको सारे धर्मों को बुरा बोलते उसको ठुकरा दे, हमें शिक्षण चाहिए, ज्ञान चाहिए, जिससे कि हम भेद कर सकते कि यह अच्छा है कि बुरा, जैसे हम डॉक्टर के साथ भी करते। और जहां तक ये अगले जन्म की बात है, अभी अगले जन्म के बारे में ये धमकी नहीं है, चेतावनी है। प्रकृति हमें बताती है कि आप जिस तरह से जियोगे उसके अनुसार आपको शरीर दिया जाएगा। भगवान बताते हैं, भगवान यम वापस प्रणाम तिजत्यन्ते कलेवन तंतमिवैति कौन्तेय सदा तद्भावनामितः। वो कहते हैं जिस तरह से आप विचार कर, आपकी विचारधारा होगी उसके अनुसार आपको अगला अगला शरीर मिलेगा। तो अगर कोई मानव बहुत मांस खाता है, तो अभी मांस बहुत खाता है तो हमारा मानव शरीर जो है मांस खाने के लिए उचित नहीं है। हम जानवर को करके काट के खा नहीं सकते, ना तो हमारा नाखून है, ना हमारे दांत है, ना हमारी पचन क्रिया है उस तरह से। तो क्या करते हैं हम, कसाई खाना बनाते हैं, फिर उनको काट के फिर खाते हैं। तो अगर व्यक्ति बहुत मांस खाने से आसक्त है तो उसको निशान बोलेगा कि आपको मांस ही खाना है तो मानव शरीर का क्या फायदा है, मानव शरीर तो अनुकूल नहीं है, मैं तुमको एक ऐसा शरीर दे दूंगा जहां पर मांस आसानी से खा सकते। एक शेर का शरीर हो सकता है, कुत्ते का शरीर हो सकता है, एक गीदड़ का शरीर हो सकता है। तो ये क्या है, ये अभी कोई धमकी नहीं है, चेतावनी है। जिस तरह से आप जियोगे उस तरह से आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पे धमकाने की कोई बात ही नहीं है इसमें। पूछा जाए धर्म की परिभाषा क्या है, तो अभी धर्म की परिभाषा को जवाब ही देना है, क्या सिर्फ शब्दों का खेल कर दिया?
जहाँ
अरे अरे शब्दों का खेल क्या कर दिया? जहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहां सत्य नहीं हो सकता, जहाँ सत्य है वहां धर्म की जरूरत नहीं। अब ये तो सिर्फ बोलने के लिए कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इसका क्या सबूत है, क्या तर्क वितर्क है? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म का परिभाषा वास्तव में कई स्तर पर है। हम व्यावहारिक स्तर पर जो बोलते हैं, हम जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, ये लोगों के जन्म से जो धर्म है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो साधारण तरीका होता है। पर दूसरा जो अर्थ है धर्म का, कि वो अर्थ है कि हमारा स्वभाव। ध्रुव धर्म शब्द आता है, वो ध्रुव से आता है, ध्रुव मतलब धारयते, जो हमारा स्वभाव है, जिसके द्वारा हम धारण होते हैं, जिसके द्वारा हम जीते हैं, वह वास्तव में धर्म है। तो धर्म क्या है? जो हम प्रेम करना और वो प्रेम को सेवा के द्वारा व्यक्त करना, यही असली धर्म है। तो असली धर्म क्या है? कि हम सबका धर्म यह है, प्रेम करना और प्रेम के द्वारा सेवा करना। अगर व्यक्ति प्रेम नहीं कर रहा है, कुछ कार्य नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति निर्जीव जैसे हो जाता है। तो ये जो प्रेम करने की प्रवृत्ति सब में है, पर जब तक हम ये प्रेम करने की प्रवृत्ति अस्थायी चीजों की ओर डालते हैं, क्षणिक चीजों की ओर डालते हैं, तब तक हमें दुख मिलता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में सब कुछ अस्थायी है। मैं किसी से प्रेम करता हूँ और फिर वो चीज चली जाती है, मैं चाहता हूँ भारत की क्रिकेट टीम से बहुत आसक्त हूँ, उससे मैं प्रेम करता हूँ, तो जब भारत की क्रिकेट टीम जीतती है तो मैं बहुत सुखी होता हूँ, और बाद में हार जाती है तो दुखी हो जाता हूँ। जब हम प्रेम इस भौतिक चीज से करते हैं तो हमें थोड़ा सुख मिलता है और दुख मिलता है, पर जब हम शाश्वत चीज से प्रेम करते हैं तो उससे हमें शाश्वत आनंद मिलता है। सर्वोत्कृष्ट शाश्वत चीज जो है वह है भगवान। तो इसीलिए भगवान से प्रेम करना और भगवान से प्रेम जागरूक करने की जो विधि है उसको धर्म कहते हैं। तो यही तो असली सत्य है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। अगर मैं सोचता हूँ मैं शरीर हूँ, मैं रोज रात को सो जाता हूँ और भूल जाता हूँ मैं कौन, अलग अलग प्रकार से मैं देखता हूँ, तो ये शारीरिक जीवन के सत्य नहीं है। असली जीवन जो है हमारा आध्यात्मिक स्तर पर जीवन है। तो धर्म की परिभाषा क्या है? वो विधियां जिससे कि हम भगवान का प्रेम जागृत कर सकते हैं और उसके द्वारा हम भगवत धाम जाकर परमानंद दे सकते हैं, और यही असली सत्य है। तो यहाँ पे सवाल ये था कि धर्म जीवन के व्यक्ति के जीवन में क्या करता है। वो कह रहे हैं कि धर्म व्यक्ति को बेबस बना देता है या आतंकवाद बना देता है। तो हम दो चर्चा करेंगे, क्या धर्म व्यक्ति को आतंकवाद बना देता है, क्या धर्म व्यक्ति को हिंसक बनाता है? अगर ये सत्य है तो फिर जो दुनिया के इलाके हैं जहां पर कोई धर्म नहीं है, जहां पर लोग नास्तिक है, वो पूरी हिंसा से मुक्त होने चाहिए, वहां पर सब शांति रहनी चाहिए। तो क्या ऐसे हुआ है? इतिहास में बहुत ही कम ऐसे राज्य थे जो पूरे नास्तिक थे, पर अभी अभी आधुनिक इतिहास में चाइना और रशिया, जो यूएसएसआर था पहले, सोवियत रशिया, ये दोनों राष्ट्र थे, वो एक ऑफिशियल सरकारी स्तर पर नास्तिक थे, और वहां पे धर्म का बहुत दबोचा गया और धार्मिक लोगों को बहुत मारा गया, पीड़ित किया गया। और फिर क्या ये दो प्रांत शांत थे? तो अगर मैंने मेरे किताब में इसके स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं, संशोधक वैज्ञानिक संशोधक भी, जो 1920 से लगभग 2000 तक जो रशिया और चाइना, उनमें जितने लोगों की मृत्यु हुई है, कैसे हुई मृत्यु? सरकार ने ही उन लोगों को मारा। तो जो मृत्यु है वो कितने लोगों की मृत्यु हुई? जितने इस इतिहास के, इस भारत विश्व के पिछले सदी में सारे देशों में, सारे युद्धों में जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु इन दो नास्तिक देशों में हुई, कई गुना ज्यादा। तो हिंसा किससे होती है? नास्तिकवाद से होती है। क्यों नास्तिकवाद से हिंसा होती है? क्योंकि नास्तिकवाद से क्या होता है? व्यक्ति के जीवन को मौल्य नहीं है। हम एक ही बार जी रहे हैं, हम केवल एक रसायनों का ढेर के समान है। और मुझे अगर भोग करना है, कोई भगवान नहीं है, कोई कर्म का नियम नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है, अगर मुझे भोग करना है, कोई बीच में आ रहा है उसको उड़ा दो और भोग करो, तो क्या है, मानवीय जीवन की कोई कीमत नहीं रहती, उससे हिंसा बढ़ जाती है। अभी जब नास्तिकवाद होता है तो लोग गर्भपात करते हैं। अभी गर्भपात जो है चाइना में है, कितना आपको पता है, 33 करोड़ बालों का गर्भपात हुआ है। 33 करोड़ मतलब भारत की संख्या, लोकसंख्या का लगभग 1/3। इतने लोगों का पिछले सिर्फ 30 सालों में गर्भपात हुआ है। और जो गर्भपात क्यों होता है, लोग सोचते हैं कि शिशु क्या है, ये केवल एक रसायनों का एक टिश्यू है, रसायनों का एक पिंड है बस। तो इस तरह से जो हिंसा है, तो अभी क्या हो गया है, कुछ नास्तिक वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम गर्भपात तो करते हैं, गर्भपात का काम भी मान लिया है। और लोग उन्होंने भी एक बड़े वैज्ञानिक जर्नल में देख लिखा कि अगर कोई मां चाहती है कि शिशु का जन्म हो जाए और उसके बाद वो उसको मारना चाहे तो मारने का मौका देना चाहिए, वो काम भी कर देना चाहिए। तो जब ये प्रस्ताव लगा तो बहुत लोगों ने विरोध किया, बोले कैसे आप, अगर शिशु का जन्म हो गया है कैसे आप उसको मार सकते हैं। तो उनका वो कह रहे थे कि वैज्ञानिक दृष्टि से शिशु और गर्भ के अंदर है या बाहर है कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो अगर आप अंदर मार सकते हैं तो बाहर मारने का फर्क है। तो ये क्या है, नास्तिक विचारधारा का परिणाम है। तो अगर अभी बाहर है मार डालेंगे तो फिर बाहर कितने वो कब तक मारेंगे, तो एक दिन का है, एक महीने का है, एक साल का है, वो मारने की कुछ उसकी मर्यादा ही नहीं रहेगी। तो नास्तिकवाद जो है ये हिंसा उत्पन्न करता है। जो हिटलर जर्मनी में राजा के समान था, तो उसने क्या किया, उसने फैसला किया कि जो भी लोग फिट नहीं है, तंदुरुस्त नहीं है, वो हमारे राष्ट्र के लिए बोझ है, उनको मार दो। तो क्या है, जो लोग अंधे हैं, जो लोग गूंगे हैं, जो लोग बहरे हैं, जो लोग लंगड़े हैं, उन सबको मार दो। और वास्तव में वैज्ञानिकों की प्रक्रिया के द्वारा उनको मार डाला था, और उसको यूजेनिक्स नाम के विज्ञान की ब्रांच कहते हैं कि बुरे लोगों को मार डालो। तो ये सब क्या होता है, ये अधर्म और नास्तिकवाद का परिणाम। तो हिंसा कैसे होते हैं, लोग अगर लोगों को विश्वास नहीं कि भगवान नहीं है, जो मेरे कार्य है उसको मुझे फल देना पड़ेगा, वो किसी को भी मार डालेंगे। और जहां तक धर्म के कारण हिंसा की बात है, हो सकता है कि धर्म के कारण लोग आतंकवादी बनते हैं, पर वह धर्म के कारण आतंकवादी नहीं बन रहे, धर्म के दुरुपयोग के कारण बन रहे। तो जो लोग होते हैं, कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इस धर्म का हूं, वो उस धर्म का है, और मुझे मेरे धर्म के विजय के लिए उस व्यक्ति के धर्म को मार डालना चाहिए, उस व्यक्ति के उस धर्म के व्यक्ति को मार डालना चाहिए। तो यह क्या है, यह अज्ञान की बात है। वास्तव में सब धर्म भगवान ही दिए हैं, और वो भगवान के पास जाने के मार्ग है। पर जब लोगों को ज्ञान नहीं होता है, लोगों को लगता है कि मेरा ही धर्म असली धर्म है, बाकी सब धर्म गलत धर्म है, और बाकी सब धर्मों को मार डालना चाहिए। पर अगर अच्छा शिक्षण होगा तो ऐसी परिस्थिति नहीं होगी। जब प्रभुपाद जी ईरान में गए थे, तो तभी ईरान में प्रचार कर रहे थे, और पीछे जो नमाज की प्रार्थना चालू होगी, तो प्रभुपाद जी तो अपनी आंखें बंद कर लिए और वो हाथ जोड़ के पूरी वो नमाज को सुन लिया उन्होंने। और जब उनकी आंखें खुली तो उनकी आंखें बहुत उज्ज्वल लग रही थी। तो प्रभुपाद जी ने उनको शिष्य से कहा, कितना सुंदर था। तो भक्त थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी क्या अच्छा नहीं होता वो सब हरे कृष्ण नाम तो का जप करते। तो प्रभुपाद जी जो दुखी हो गए, वो कहने लगे, तुम मुझे संकीर्णवादी क्यों बना रहे, वो उनकी पद्धति से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, हम हमारी पद्धति से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो तुम मुझे संकीर्णवादी क्यों बना रहे हैं। तो अगर हमें धर्म का असली शिक्षण होगा तो हम समझेंगे कि वास्तव में भगवान के प्रति भगवान श्रद्धा व्यक्त करना, उनकी भक्ति करने के लिए अलग अलग विधियां है, और फिर धर्म से सहनशीलता आएगी, आतंकवाद नहीं है। तो अगर आतंकवाद आ रहा है धर्म से, क्यों आ रहा है, वो अज्ञान के कारण। वो जब लोगों को धर्म का तत्व ज्ञान पता नहीं है और संकीर्णवाद आता है, तो उससे आतंकवाद आता है। तो इस तरह से ये सब भ्रांत धारणा है। और क्या धर्म व्यक्ति को लाचार बना देता है, कैसे राजा बनाएगा? वास्तव में धर्म व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है। जब दुनिया में समस्या आती है हमारे लिए, जब हम समझते हैं कि भगवान मेरे साथ में, भगवान मेरी मदद करेंगे, तो उससे हमारे हमें एक अंतरंग शक्ति मिलती है। और वैज्ञानिकों ने बहुत संशोधन किया है, और मैंने कई बार देखा है, मेरे किताब में लिखा है कि पिछले 80 सालों से रिसर्च चल रहा है कि धार्मिक लोग और अधार्मिक लोग, और कौन लोग मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अधिक तंदुरुस्त रहते हैं। तो देखा है कि जो मानसिक समस्याएं होती है, जो कुछ बुरी आदतें होती है, डिप्रेशन होता है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति होती है, ये सब अधार्मिक लोगों में अधिक होती है और धार्मिक लोगों में कम होती है। एक बहुत बड़ा अधार्मिक तत्वज्ञानी था, नास्तिक तत्वज्ञानी था, और उसका सिद्धांत यह था, उसका सिद्धांत यह था भगवान को करा दिया तो जीवन का कुछ अर्थ नहीं रहा। तो उसका उसका तत्वज्ञान था कि पूरा जीवन व्यर्थहीन है। तो तत्वज्ञान का एक ही सवाल है कि आत्महत्या आज करे या कल करे, तो कितना मूर्ख करना है, और क्यों करना है, वो नास्तिकवाद के कारण। और कई ऐसे बड़े बड़े नास्तिक विचारवंत है, एक नीच नाम का था, वह अपने आखिरी साल तक पागल बना था, दूसरा एक अल्बर्ट कैमस था, उसने आत्महत्या कर ली अपने अनुयायी के साथ। तो क्या है लाचार तो क्यों आता है? अगर हम सोचते हैं कि मैं इस दुनिया की समस्याओं को सामना करने में बिल्कुल अकेला हूं और कोई भी मेरे मदद के लिए नहीं है, तो उससे जो बोझा है बहुत हमारे सिर पर बढ़ जाता है, सहन नहीं कर पाएंगे, तो उससे हम लाचार बन जाते हैं। और जब हम समझते हैं कि भगवान मेरे साथ में है, चिंता सर्व दुर्गाणी मत्र साधांतरिष्यसि अथ चेत्त्वं अहं कवरं न श्रोष्यसि विनक्षसि। भगवान कहते हैं कि आप मेरी चेतना करो, आप मेरा स्मरण करो, मेरे कृपा से आप समस्याओं को परे चले जाओ। हमें एक अंतरंग शक्ति मिलती है जिससे हम सहन कर सकते हैं और परे कर सकते। वास्तव में नास्तिकवाद व्यक्तियों को लाचार बनाता है, धर्म लाचार बनाता है, धर्म व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, आत्मविश्वासी बनाता है। तो किसी को कुछ सवाल है इसके बारे में? लोगों में कई और विषय भी थे, मैं उनके बारे में चर्चा कर सकता हूँ, अभी समय है, पता किसी को विशेष सवाल होंगे तो मैं सवालों का जवाब देना चाहूंगा। यस तो ज्योतिष शास्त्र है, उसको भक्त ज्योतिष शास्त्र के बारे में कितना क्या करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र जो है एक वैदिक शास्त्र है, और उसका जो वह एक प्रामाणिक शास्त्र है, वेदांग है, वो उपवेदांग है उसमें है। पर आजकल जो ज्योतिष है कई बार वो केवल धंधे के रूप में करते हैं, तो इसीलिए आजकल ज्योतिषियों के जो भविष्यवाणियां हैं कहां तक सच हो कहां तक सच हो उससे कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए साधारणतया भक्तों को हम क्या समझते हैं कि इस भौतिक जगत में कुछ नियम है, और उन नियमों के बारे में हमें शास्त्र से पता चलता है, और उन नियमों के बारे में अलग अलग देवतागण भी है। तो कैसे होता है कि हमारे जो कुंडली होती है, कुंडली कैसे कार्य करती है, हमने जो पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार एक विशेष पल पे हमारा जन्म होता है, और उस पल पे जो ग्रहों की रचना है वह हमने किस प्रकार के कर्म किए हैं उसका लक्षण देती है, और उसका पता था कि आपका मंगल ऐसा है, मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि वो मंगल हमें परेशानी कर रहा है, हमने ही पूरे जन्म ऐसे कर्म किए हैं उसके कारण हमारे जन्म के समय वो मंगल उस जगह पे। तो इसीलिए कभी बताया जाता है कि वो मंगल की पूजा करो, उससे आप उस समस्या से निकल सकते हो। पर भगवान भगवान बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मंगल बड़े शक्तिशाली है, पर मंगल के स्वामी भगवान कृष्ण है, शनि के स्वामी भगवान कृष्ण है, तो उनकी शरण में जाते हैं तो हमें जो ग्रहों की बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, खास करके एक दो चीजें जो है। कभी कभी क्या होता है कि अगर ज्योतिष अच्छा है तो हमें नवजात शिशु जन्म हुआ है तो उसकी प्रवृत्ति क्या है यह समझने में थोड़ा मार्गदर्शन मिल सकता है। तो मतलब क्या कि कभी कभी माता पिता को चाहिए मेरे पुत्र को और इंजीनियर बनाना है, मेरे पुत्र को डॉक्टर बनाना है, पर अगर उसकी प्रवृत्ति जो है कुछ और है तो उसको जबरदस्ती एक दिशा में डालने से उसका जीवन खराब हो सकता है। तो प्रवृत्ति समझने के लिए हम थोड़ा ज्योतिष मार्ग ले सकते हैं, पर हरेक बार एक हरेक समस्या के लिए तो ऐसी कुछ चीज है जिसके लिए हम ज्योतिष मार्ग ले सकते हैं। तो हर चीज के लिए हम ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको स्वीकार करते हैं, पर हम भगवान की श्रद्धा रखकर भगवान हमारी समस्याओं का हल कर सकते हैं। ठीक, तो यह सवाल है। जो मन्नत की विधि है भगवान से कुछ मांगना,
यस, वॉट एवर जनरल ह्यूमन बींग दे आस्क अबाउट गॉड, ये कर दो ये हो जाएगा, दैट इज राइट और रॉन्ग।
भगवान से हमें कुछ मांगना ये उचित है या अनुचित है, इसमें सही या गलत की बात नहीं है। हम जरूर भगवान से मांग सकते हैं, पर हमें हमारी भक्ति हमारे मांग के पूर्णता पे निर्भर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम क्या समझते हैं, भगवान हमसे और बुद्धिमान है, भगवान हमसे और शक्तिशाली है। अगर हमें लगता है कि मेरे जीवन में कुछ जरूरत है, अगर मुझे नौकरी नहीं है, नौकरी जरूरी है मेरे लिए, मैं भक्ति भी करना चाहता हूँ तो नौकरी नहीं तो भक्ति कैसे करूँगा, तो भगवान से हम जरूर मांग सकते हैं। हमारा जो भगवान से संबंध जोड़ना मतलब क्या, हमारे जो हृदय में समस्या है वो भगवान को उनसे
मार्गदर्शन। मेरा सवाल ये है कि मतलब ये करने से मैं ये कर दूंगा, या ये जो मानते कि मतलब ये अगर मैं पास हो गया तो ये कर दूंगा, ये चढ़ाऊंगा,
अगर ये है अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, तो यह जो भाव है यह हम यह भगवान से धंधे का भाव जैसे है कि मैं ये करूंगा आप ये कर दो फिर मैं ये कर दूंगा, तो यह भाव है इतना अच्छा नहीं है। पर तो क्या है कि हम भगवान से प्रेम करना चाहते, पर अगर किसी भी भगवान के पास व्यक्ति आ जाता है, भगवद्गीता के सातवें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कई प्रकार से भक्तों के लोगों की बात है, तो उनमें से एक पद्धति है कि आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी और ज्ञानी। आर्तो मतलब जो दुख में है भगवान के लिए आप दुख निकाल देते हैं, या अर्थार्थी आप मेरे लिए दे दो, मुझे ये दे दो वो दे दो, तो भगवान कहते हैं वो भी अच्छा है, वो भी लोग सुकृति है, पर भगवान चाहते हैं वो अगले श्लोक 17वें 18वें श्लोक में बोलते हैं कि इससे बेहतर है कि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिए और शाश्वत रूप से भक्ति में लग जाए। तो इसलिए अगर कोई ऐसे कर रहा है तो अच्छा है, भगवान इसने किसी वजह से भगवान के पास आ रहा है, पर साथ साथ उस व्यक्ति को बोला चाहिए अगर आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं तो कौन है वो व्यक्ति जिसे मांग रहे हैं उसके बारे में आप समझने का प्रयास करो, आप भगवद्गीता पढ़ो, तो उससे क्या हो बौद्धिक स्तर पर विकास हो जाए। क्या होता है जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं कि आप मेरे लिए कर दो, तो क्या उसमें हम भगवान में श्रद्धा रखना, मतलब दो चीजों में श्रद्धा रखना है, भगवान की शक्ति में श्रद्धा और भगवान की बुद्धि में श्रद्धा। भगवान की शक्ति में श्रद्धा मतलब क्या, अभी मुझे मेरे एग्जाम में पहला आना है और भगवान मुझे पहला ला सकते हैं, तो इसीलिए भगवान के शक्ति में भी श्रद्धा है, पर अगर मैं पहला नहीं आता क्या है भगवान की कुछ फायदा ही नहीं, भगवान नहीं है, भगवान कुछ काम नहीं करते। अब एक ऐसा जब विचार करते हैं तो उसका मतलब क्या है, हमारी भगवान में आधी श्रद्धा है, भगवान की शक्ति में श्रद्धा है पर भगवान की बुद्धि में श्रद्धा नहीं। हम क्या सोच रहे हैं कि मेरी बुद्धि भगवान की बुद्धि से अच्छी है, मुझे लगता है कि मेरी ये मुझे चाहिए और अगर भगवान नहीं देते तो भगवान मूर्ख है। नहीं, वास्तव में भगवान हमसे बहुत बुद्धिमान है, हमारी बुद्धि भी उनसे ज्यादा है। तो जब हम भगवान की शक्ति में श्रद्धा रखते हैं, शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो हमारी भगवान की बुद्धि में श्रद्धा भी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा हम समझेंगे कि अगर कभी कभी मेरी मैं जो मांगा है वो पूरा नहीं हुआ तो भी भगवान मेरे परम चिंतक है, और कुछ ऐसी योजना हो सकती है जिससे कि जो मैं मांग रहा हूँ मेरे लिए अच्छा नहीं है, भविष्य में अच्छा हो सकता है मेरे लिए। क्या है, एक तरह से हम सब पेशेंट है, भगवान डॉक्टर है, तो जो पेशेंट मांगता है वो हमेशा उस पेशेंट की सेहत के लिए अच्छा हुआ ऐसे नहीं है, तो डॉक्टर कभी वो चीज देगा कभी चीज नहीं देगा, तो हमें भगवान को एक डॉक्टर के रूप में देखना चाहिए। अगर हमें कुछ जरूरत है तो मांग सकते हैं, भगवान से बोल भी सकते हैं कि भगवान आप ही मेरे लिए करोगे तो मैं आपके लिए कर लूंगा, वह धंधा ही होगा ऐसे नहीं, वह भी हमारी श्रद्धा का एक लक्षण हो सकता है कि तो हम भक्ति में श्रद्धा बोल सकते हैं कि भगवान अगर ये हो जाएगा तो मैं आपके लिए ये करूंगा, उस बुरा नहीं है पर वो सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि वो उसमें हम भगवान की बुद्धि की भूमिका को समझ नहीं रहे हैं। जब हम भगवान की बुद्धि की भूमिका समझते हैं तो हम समझे कि भगवान जो आप मेरे करेंगे वो सर्वोत्कृष्ट है, तो मैं आपकी शरण में आऊंगा, मुझे लगता है कि मेरे लिए अच्छा है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने कर दीजिए मेरे लिए। पर अगर आपकी बुद्धि से आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है तो जो मेरे लिए अच्छा है वह मुझे आप दीजिए, और वो मेरे लिए कैसे अच्छा है वो समझने के लिए बुद्धि भी दीजिए, तो स्वीकार करने के लिए मुझे शरण भी दीजिए। तो उस तरह से जब हम करते हैं तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे। उससे
अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहित होकर उसके ऊपर जाके उसमें ऐसे एस्पिरेशन लेते, मतलब एडमायर करते हैं वो चीज को। तो जैसे कि अभी जो मोमेंट चल रहा है तो वहां पे महाप्रभु का इतना ग्रेस है कि ये मोमेंट बहुत अच्छे से चल रहा है, लोग साइंटिस्ट में आते हैं खुशी खुशी उसको ये करते हैं, मतलब अपना लेते हैं। लेकिन इन अदर दिस मोमेंट्स लाइक द आर्ट ऑफ लिविंग एंड रजनीश रोशो, वहां पे भी कंपैरिजन वाइज देयर आर सो मेनी सेंटर्स, पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वहां पे लोगों को अट्रैक्शन होना और वो जो सक्सेस है वो लोगों को क्या अट्रैक्ट करता है और क्यों करता है?
तो अलग अलग संस्थाओं में धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं में लोग जाते हैं उसके आकर्षित होते हैं, तो कृष्ण महाराज चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, तो वहां उसके कारण लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो वहां पे लोग क्यों आकर्षित हो रहे हैं? तो वास्तव में अधिकांश लोगों को धर्म क्या है और धर्म से क्या प्राप्त करना है यह पता नहीं है। तो बहुत से लोग मानसिक और आध्यात्मिक इन दिनों को एक ही मान लेते हैं। तो लोग मंदिर में जाते हैं क्यों, कोई संस्था में जाते हैं, कुछ कीर्तन करते हैं, कुछ सुनते हैं, बोलते हैं, तो जाते अपने मन की शांति चाहिए। ठीक है, मन की शांति अच्छी है, पर मन की शांति से ऊंची है मन की शुद्धि, मन का शुद्धिकरण करना और शुद्धिकरण करके प्रेम प्राप्त। तो अलग अलग प्रकार की विधियां है, प्रक्रिया है, थोड़ी बहुत मन की शांति मिल सकती है। तो क्या होता है, कई बार जब लोग जाते हैं अलग अलग संस्थाओं में तो क्योंकि उनको शिक्षण नहीं मिल रहा है तो क्या क्या अपेक्षा है, क्या मिलना चाहिए वो पता ही नहीं है। तो इसीलिए उनको अगर थोड़ी मन की शांति मिल गई तो पता है अच्छा है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ मन की शांति मिल, और शायद मिल भी रही हो, ऐसे नहीं क्या नहीं मिल रही हो। पर यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर मेरी भगवान से आसक्ति जागृत नहीं हुई है, भौतिक चीजों से आसक्ति कम नहीं हुई है, तो अगर मन शांत रहेगा तो शांति से मृत्यु हो जाएगी और जन्म मृत्यु के चक्कर चक्कर में फंसा रहूंगा। उससे कुछ वास्तव में मेरा चीर काल में कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ऐसे नहीं है कि दूसरी संस्था की हमें निंदा करनी चाहिए, पर हमें लोगों को समझाना चाहिए कि धर्म के पास जा रहे तो उसका असली फल मिला है हमें भगवान, हम शाश्वत जीव है और हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर हम शिक्षण अच्छे से प्रदान करते हैं तो मैं इसको आने के पहले कई संस्थाओं में गया, और अधिकांश संस्थाएं जो है वो आपको बताएंगे कि आपको मन शांत कैसे करें, ध्यान कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के तट पर बैठे हैं और नदी बड़ी शांत चल रही है, मधुर हवा आ रही है, दूसरी ओर पहाड़ है, पहाड़ के पीछे बादल है और आपका सारा शरीर शांत हो गया, आपका मन शांत हो गया, कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। तो वास्तव में मन की शांति अच्छी है, पर मन की शांति ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, हमें आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम चलना है, तो शिक्षण देके तो फिर और बहुत भगवान के आदर्श हो जाए।
हरे कृष्ण। आजकल देखते हैं टीवी का इन्फ्लुएंस इतना है कि जो चीज उसमें दिखा रहती है सही, मतलब गलत भी रहेगी तो भी पीपल उसको सही तरह से एक्सेप्ट कर देगी, और अगर कोई डिवोटी रहेगा वो अगर वो चीज बनाने का ट्राई करेगा तो उसको लोग उतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
और जैसे कि मतलब भगवान के शब्द है तो भगवान की हर चीज अट्रैक्टिव होती है, तो ऐसा क्यों है कि हम मतलब अगर भगवान के शब्द अगर हम बता रहे हैं तो वो मतलब वो लोग क्यों एक्सेप्ट कर पाए?
तो भगवान सर्वाकर्षक है, भगवान के शब्द लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? उसके विपरीत जो भौतिक जो स्टीरियो पे दिखाते हैं तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो क्या है, भगवान सर्वाकर्षक है, पर वह भगवान का सर्वाकर्षण को आध्यात्मिक स्तर पे हम समझ सकते हैं। भौतिक स्तर पे समझना है तो हमें भौतिक स्तर पर भी प्रभावशाली होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी एक बार हांगकांग में गए, हांगकांग में सिंगापुर में थे, वहां पे एक बड़े होटल में प्रभुपाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो फिर फाइव स्टार होटल में स्वामी था, तो वहां पे जो अखबार वाले आए थे वो कहने लगे स्वामी अभी आप तो सन्यासी हो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइव स्टार होटल में क्यों रखा है, क्या रोचित है? प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ के जब कर सकता हूँ, पेड़ के नीचे नहीं सकता, पर अगर पेड़ के नीचे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता तो क्या आप आते थे? तो यहाँ पे क्या है, भगवान का गुणगान भी हमें इस तरह से करना चाहिए कि भौतिक दृष्टि से भी वो आकर्षक हो। जैसे अभी पूना में मंदिर जो हुआ था हमारा पूना में संत मंदिर, तो राष्ट्रपति आए थे भारत के, वो उसको इनॉग्रेशन की थी, तो पहले 100-150 लोग मंदिर में आते थे रोज के दिन, अभी लग कई हजारों की संख्या में लोग आते हैं रोज दर्शन के लिए। और वो लोग क्या कहते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, अगर प्रेसिडेंट ये मंदिर देखने आया तो हमें भी देखने आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, भगवान मंदिर में है इसलिए उनके दर्शन कर जाना ये भाव नहीं है। तो लोग क्या देखते हैं, भौतिक दृष्टि से भगवान, भौतिक दृष्टि से आकर्षक क्या है। तो इसीलिए हमें जो कृष्ण भावना का प्रस्तुतिकरण है वो भौतिक दृष्टि से भी आकर्षक करवाना चाहिए। तो इसीलिए जहां तक हो सके अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि जो मैंने जो प्रश्नोत्तर बनाए हैं इसके आधार पर जो ओ माय गॉड का प्रत्युत्तर करने वाला कोई मूवी बना सके कोई, तो हम प्रयास कर रहे हैं, पर इसके लिए बहुत लक्ष्मी लगती है और टैलेंट लगता है, तो अगर होगा तो बहुत अच्छा है। तो हमें भक्तों को और करना चाहिए कि और प्रभावशाली पद्धति से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए आध्यात्मिक सिद्धांत का, और फिर लोग देखेंगे कि लोग उससे आकर्षित हो जाएंगे। जो सही में बुद्धिमान लोग हैं कैसा भी प्रस्तुतिकरण हो वो उसे आकर्षित हो जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे सब्सटेंस है, यहाँ पे अच्छी बात है, पर अधिकांश लोग वहां तो जाएंगे नहीं, सिर्फ पहले वो प्रस्तुतिकरण देखते हैं। राधा राज बहरे जी का इतना प्रभुपाद जी सुंदर मंदिर बनाया है, तो यहाँ पे इतना विशाल मंदिर है, लोग देखने आ जाते हैं, फिर उनको आप जैसे भक्तों का सम्मान मिलता है, उनका कल्याण हो जाता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण और प्रभावशाली पद्धति से करना चाहिए। कोई और सवाल है? आपके आप एक मिनट इनके बाद, इनके बाद आप बैठिए।
एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है, आजकल कोई भी कमा रहा है तो बस एक चीज है कि होश भूत होता है कि नहीं होता है, इसपे बहुत कुछ बहुत दिल बनती है, और इसके बारे में मतलब सही में होता है कि नहीं, इसपे गौर पे गौर रहेगा, भूत नहीं आएगा, पहुंच जाएगा, ऐसी दिल बनी है तो क्या घोष होता है, ऐसा कुछ होता है क्या कि गॉड रहेगा उधर भूत नहीं रहेगा, भूत होता है कि नहीं होता है?
तो क्या दो सवाल है, क्या भूत अस्तित्व में होते हैं, और अगर क्या भगवान होते तो वहां पे भूत चले जाते हैं? तो कैसे है कि सबसे पहले भूत मतलब क्या है उसको समझना चाहिए। तो कैसे है कि हमारा जो अस्तित्व है, अभी हम आत्मा इंग्लिश में है, इसमें मेरा एक लेख है, मेरा वेबसाइट है theschoolscientist.com, उसमें तो अभी आपको जो इंग्लिश को समझ में आता है वो ठीक है, नहीं आता तो फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं समझा दूंगा। तो भूत क्या है, मैं सबसे पहले समझाता हूँ क्या है कि यहाँ पे आप तीन चक्र देख रहे हैं, अंदर का जो चक्र है वो आत्मा है, और फिर इसके बाहर जो है सूक्ष्म शरीर है, और सबसे बाहर जो है वो स्थूल शरीर है। तो हम सब जो है कि आत्मा है, फिर हमारा मन और बुद्धि अहंकार वो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर है, और एक स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं दूसरे का। तो जब हमारी मृत्यु होती है तो केवल स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा और सूक्ष्म शरीर जो है वो हम यह शरीर त्याग देते हैं और फिर दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। तो मतलब यहाँ पे स्थूल शरीर यहीं पे रह जाएगा और आत्मा और सूक्ष्म शरीर जो है दूसरे शरीर में चले जाएंगे। पर कभी कभी क्या होता है, अगर व्यक्ति मान लीजिए आत्महत्या कर लेता है, तो आत्महत्या कर लेता है तो जब हम जन्म लेते हैं तो हमें हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार इस शरीर में कुछ समय के लिए जीना है। मान लीजिए मेरे वे व्यक्ति है 60 साल जीने वाला था पर वो 20 साल की उम्र में आत्महत्या कर लेता है, तो अभी अगले 40 साल के लिए उस व्यक्ति को नया शरीर नहीं मिलने वाला है। तो फिर क्या होता है, वो व्यक्ति केवल ये बाहर के शरीर के बिना सिर्फ आत्मा और सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है। तो अभी ये जो मृत्यु के समय क्या होता है, जो स्थूल शरीर में चला गया और आत्मा और जो सूक्ष्म शरीर के बाहर आ गया, और अगर उसको दूसरा शरीर नहीं मिला तो जो आत्मा और सिर्फ सूक्ष्म शरीर है उसको भूत कहते हैं। भूत मतलब क्या, आत्मा और सूक्ष्म शरीर पर जो स्थूल शरीर के बिना है। तो अभी क्या होता है, ये भूत नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, पर वास्तव में भूत वो खुद लोगों को दुख देते हैं पर खुद भी बहुत दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं, क्योंकि उनको शरीर नहीं है और अगर हमें कुछ करना है, कुछ इच्छा है पूरी करनी है, तो पूरी करने के लिए शरीर चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को स्वीट खाने की इच्छा है पर अगर उसको जिह्वा ही नहीं है तो स्वीट खाएगा कैसे। तो हमें इस जो तो ये भूतों की परिस्थिति है कि वो क्या करते हैं, उनको भोग करने की इच्छा है पर यंत्रणा ही नहीं है भोग करने की। तो जिह्वा नहीं है खाने के लिए, अगर मैथुन का भोग करना है तो शरीर नहीं है भोग करने के लिए, तो फिर उसके कारण वो पीड़ित रहते हैं। और फिर ऐसी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, किसी और कमजोर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। तो वो क्या होता है, किसी के शरीर में भूत आ गया है। तो मतलब क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये एक तो एक साधारण व्यक्ति है, उसका शरीर है, उसका स्थूल शरीर, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, एक आत्मा है, पर क्या होता है ये भूत उसके शरीर में घुस जाता है। तो यहाँ पर जो मूल व्यक्ति है उन्हीं में आ गया है और जो भूत है उसके अंदर आ गया है। जब भूत उसके अंदर में आ जाता है तो क्या होता है, वो भूत उसके शरीर को नियंत्रण करता है और कभी कभी वो व्यक्ति अलग ही बातें करने लगता है। जैसे क्या है, उसका आवाज बदल जाएगा, उसकी इच्छाएं बदल जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा। और जो जो प्रभुपाद जी के वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर माइकल क्रीमो करमा, उन्होंने किताब लिखा है ह्यूमन रिवोल्यूशन, और उसमें कई ऐसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए हुए पसंद बताए पोजिशन, इंग्लिश में इसको पोजिशन कहते हैं, मतलब कोई भूत अगर किसी व्यक्ति में आ जाता है तो उसको पोजिशन कहते हैं। तो उन्हें देखा है कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का स्वभाव पूरा बदल जाता है। तो क्यों हो रहा है वो, क्योंकि कोई और जो आत्मा सूक्ष्म मतलब भूत उसके अंदर आ गया है। तो भूत का अस्तित्व है और भूत कभी कभी व्यक्ति के शरीर में आ भी सकते हैं। पर कौन से लोग शरीर में आते हैं, जो लोग कमजोर है। ये कमजोर मतलब ये शारीरिक स्तर पर जोर की बात नहीं हो रही है, कमजोर मतलब जो तमोगुण के प्रभाव, मानसिक स्तर से जो कमजोर है, जो लोग नशा पान करते हैं, जो लोग मानसिक स्तर से कमजोर है उनको भूत पकड़ लेते हैं। पर अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम अंतरंग रूप से सशक्त बनते हैं। तो इसीलिए वहां पे भूत भूत वगैरह नहीं आते। इसीलिए ये सत्य है कि अगर हम अगर कहीं किसी ऐसे बहुत पसंद भी हुए कि अगर कहीं कई जगह पे भूत से अमेरिका में प्रभुपाद जी मंदिर खोले तो प्रभुपाद जी या भक्तों का ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। तो कई बार ऐसे जगह पे मंदिर खोल दिए जहाँ पे ऐसा लोग ऐसा खबर था कि यहाँ पे कोई भूत लगते हैं तो कोई वहां पर जाना भी नहीं जाता। तो वो जगह थी बहुत सस्ते में मिल जाती थी। तो फिर भक्त प्रभुपाद बोलते हम यहाँ पे मंदिर बना लेंगे तो कोई आएगा ही नहीं। प्रभुपाद बोले आप चिंता मत करो, आप वहां पे जाओ, वहां पे कीर्तन करो। और फिर वो कीर्तन करते थे और फिर क्या होता, भूत चले जाते थे। तो ये वास्तव में कई प्रसंग हुए हैं ऐसे। तो इसीलिए हमें लंदन में भक्तिविदान में ऐसे हुआ है, कई जगह पे हुआ है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि भूतों का अस्तित्व है, पर अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें भूतों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का जहां पे होते हैं वहां पे अंतरंग शक्ति होती है और फिर उस व्यक्ति को भूत पकड़ नहीं सकते। आखिरी सवाल पूछे
मतलब ब्रह्मचर्य और सन्यासी किसे कहते हैं ये मुझे मालूम नहीं है और मुझे ये जानकारी चाहिए। और परिवार के लोग भी कृष्ण से जुड़ते हैं, फैमिली रहते हुए भी कृष्ण से जुड़ते हुए हैं, इसमें उत्तम मध्यम निम्न कौन सा? सबसे पहले तो फर्क मुझे ये जानना चाहिए कि सन्यासी किसे कहते हैं और ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं।
ब्रह्मचर्य सन्यासी कौन है और फिर गृहस्थ भक्ति करते हैं तो दोनों में ऊंचे श्रेष्ठ कौन है? तो वास्तव में जो ब्रह्मचर्य शब्द है ब्रह्मचरति की ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचरण करते हैं वो ब्रह्मचारी है। मतलब जो आध्यात्मिक सत्य में जी रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से जी रहे हैं वो ब्रह्मचारी है। तो यह ब्रह्मचारी का एक पहलू है। तो इस परिभाषा से हर एक भक्त, हर एक पुरुष और हर एक सब ब्रह्मचारी हो सकते हैं। तो पर ये जो एक पारंपरिक रूप से ब्रह्मचर्य के शब्द का जो अर्थ है वह जो अविवाहित रहकर सर्वस्व अपने भगवान की सेवा के लिए करते हैं उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ब्रह्मचर्य सन्यासी में फर्क यह है कि सब लोग जो होते हैं चार आश्रम से जाते हैं जाने चाहिए। पहला जो आश्रम होता है अविवाहित रहते तो वो ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद में कुछ गृहस्थ बनते हैं, फिर कुछ वानप्रस्थ लेते हैं और फिर वो सन्यास लेते हैं। तो सन्यास जो ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचारी के और प्रगतिशील जो स्तर है सन्यास का स्तर है, जहां पर व्यक्ति व्रत लेता है कि मैं अभी इस भौतिक जगत को पुनः नहीं देखूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा और जीवन भर भगवान की सेवा में रहूंगा। तो ब्रह्मचारी सन्यास एक ही भाव है पर जो तीव्रता है प्रैक्टिस की अभ्यास की वो सन्यासी में और होती है। और हाँ गृहस्थ के रूप में भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और कौन ऊंचा है कौन नीचा है वास्तव में यह व्यक्ति के अंतरंग चेतना में है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक आश्रम ज्वाइन कर लेने से कोई ऊंचा बन जाता है कोई नीचा बन जाता है। हमारे भक्ति में श्रद्धा भगवान श्रद्धा कितनी है, भगवान से आकर्षण कितना है उस पर निर्भर है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में संन्यास आश्रम में भगवान से भगवान का स्मरण करने के लिए भगवान की सेवा करने के लिए सुविधा अधिक होती है, समय अधिक होता है, शास्त्रों का अध्ययन करने का समय अधिक होता है। तो इसीलिए अधिकांश रूप से ब्रह्मचर्य संन्यास जो होते हैं वो आध्यात्मिक शिक्षक बनते हैं और वो आध्याय भगवान का ज्ञान बाकी सबको देते हैं। तो सुविधा अधिक है एक तरह से इन वैराग्य के आश्रम में, पर अंत में जो प्रगति है वो किसी आश्रम पे निर्भर नहीं है, वह वास्तव में व्यक्ति के चेतना पे, व्यक्ति की श्रद्धा पे, व्यक्ति के भगवान के आकर्षण पे निर्भर है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किबा मित्र किबा नासी शूद्र के बना है, यही कृष्ण प्रवक्ता से ही गुरु है। व्यक्ति ब्राह्मण हो सन्यासी हो शूद्र हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो भगवान के बारे में जानता है वह गुरु है, वह प्रगतिशील भक्त है। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में जो अनुकूल है वो स्वीकार करना है। हमें ऐसे नहीं कि हमें ब्रह्मचारी बनना है या हमें गृहस्थ बनना है, हम सबको भक्त बनना है। और कुछ लोगों के लिए ब्रह्मचारी बनके भक्ति करना अनुकूल होता है, कुछ लोगों के लिए गृहस्थ बनके भक्ति करना अनुकूल होता है। तो हर एक व्यक्ति को खुद विचार करके दूसरे भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करके फिर फैसला करना है और फिर हमारी श्रद्धा के अनुसार भक्ति के अनुसार हमारी प्रगति होगी।
दिखाया इस पिक्चर में बोला गया कि मंदिर में दान करने से अच्छा है मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनका दान करना अच्छा रहता है। तो मैंने मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उनका दान किया तो वो जाके बाहर सिगरेट पी लिया, तो मेरा दान का क्या मतलब है?
मंदिर में दान देने के पहले पे भिखारियों को दान देना चाहिए। तो ये बड़े किस्मत की बात है कि जब भी भगवान पे कुछ पैसा खर्च करते हैं तो लोग भिखारियों की याद आती है। अभी इस दुनिया में कितने सारे लोग कितने सारे फालतू चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो अभी भिखारियों की याद क्यों नहीं आती? अभी यूनेस्को जो है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उन्होंने संशोधन किया है कि अमेरिका और यूरोप ये जो दो विभाग है जितना पैसा परफ्यूम पे खर्च करते हैं, परफ्यूम मतलब शरीर को सुगंधित करने के लिए, जो कितना पैसा परफ्यूम पे खर्च करते हैं उतने पैसे से दुनिया के सारे भूखे लोगों को खाना मिल सकता है। तो मतलब क्या है कि वहां पर कितना खर्चा होता है। उस तरह से मनोरंजन के लिए अभी मूवीज बनाने के लिए अभी आईपीएल चालू होने वाला है, उस पर कितना खर्चा होता है। तभी अभी आईपीएल का इनॉग्रेशन के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, तभी दिखाने की याद क्यों नहीं आती। तो ऐसे क्यों है कि जब भगवान के लिए कुछ दान दिया जाता है तभी भिखारियों की याद आती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भिखारियों को भूखा रखना चाहिए, ये बात नहीं है, पर जब इस तरह से जोड़ किया जाता है तो ऐसे क्या लगता है कि भगवान को दान देने के कारण लोग भूखे रहे हैं। ऐसे नहीं, कितने जगह पे लोग ऐशो आराम कर रहे हैं उसके कारण भिखारी भूखे रह रहे हैं। तो अगर लोग भगवत चेतना में रहेंगे, समाज धार्मिक रहेगा, तो फिर उससे क्या होगा, उससे लोगों में दानशीलता आएगी, सरकार में नीति आएगी, और फिर उससे लोग भिखार भूखे नहीं रहेंगे। तो आपने जैसे सिद्ध बताया है कि भिखारी दुरुपयोग करते हैं, उनको पैसा भी देते हैं तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, और फिर उससे हमारे दान का कुछ फायदा नहीं होगा। तो वास्तव में जरूर जो भूखे हैं उनको मदद करनी चाहिए, पर मदद कैसे करनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि भगवान की पूजा को बंद कर देने से भूखों का भूखा को बंद हो जाए। वास्तव में अगर जितनी भगवान की भक्ति बढ़ेगी उससे लोगों का और कल्याण होगा। कैसे, सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर जरूर कल्याण होगा, पर भौतिक स्तर पर भी अगर हमें देखना है तो अभी इस लोगों में लोग भूखे क्यों रहते हैं, भिखारी भूखे क्यों रहते हैं, कई कारण है। एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अन्न उत्पन्न नहीं हो रहा है। और अन्न उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो जमीन है वो जमीन अन्न उत्पन्न करने के जगह पे गन्ने उत्पन्न कर रही है, और गन्ने क्यों उत्पन्न कर रही है, लोगों को शराब बनाने के लिए। तो ऐसे लाखों लाखों एकड़ जगह है जहां पे अन्न बनाया जा सकता है और वहां पे गन्ने बनाए जा रहे शराब पीने के लिए। तो जितनी भगवान की भक्ति की वृद्धि होगी उतने लोग बुरे आदत से मुक्त हो जाएंगे। अगर लोग शराब पीना छोड़ देंगे तो सारी जमीन जो गन्ने बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है वो अन्न बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर सारे भूखे लोग नहीं मरेंगे। तो उसी तरह से जो लोग मांसाहारी है, वास्तव में क्या होता है जब व्यक्ति मांस खाते हैं तो सबसे पहले हमें वो जो जानवर है जानवर को खिलाने के लिए पहले घास या अनाज जो कुछ बनाना पड़ता है, और फिर वो जानवर को इतना अनाज खिलाने के बाद वो इतना सा मांस बनता है। तो क्या होता है, अधिकांश जो खाता है वो पचन क्रिया से निकल जाता है। तो फिर जो वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है कि जितनी जमीन एक मांसाहारी व्यक्ति को खाना खिलाने के लिए लगती है उतने जमीन में 5 से 15 शाकाहारी लोग अन्न खिला सकते हैं। क्यों, क्या होता है वो उतनी जमीन, आप समझ रहे क्या बोल रहा हूं, इतना सारा अगर हम अनाज बनाएंगे वो एक गाय खाएगी या एक जानवर खाएगा, सुअर खाएगा, और फिर उससे इतना सा मांस बन जाएगा और उतना मांस लोग खाएंगे। तो ये वैज्ञानिकों ने ही बताया है, मेरी किताब में मैंने इसका स्टेटिस्टिक्स भी दिया है, रेफरेंसेस भी दिया है। तो कि अगर अभी आजकल अमेरिका में जो 90% जगह जो है वह जो खेती है, खेती मानवों के लिए अन्न नहीं बना रही, जानवरों के लिए अन्न बना रही, और ये बहुत दुरुपयोग है। और उससे क्या होता है, मानवों के लिए अन्न कम बन रहा है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उन्होंने कहा है कि अगर सारे विश्व के लोग शाकाहारी बन जाएंगे तो दुनिया में अनाज की कमी है वो समस्या पूरी तरह चली जाएगी, और अभी जितनी लोक संख्या है उससे 3 गुना अधिक लोगों के लिए पृथ्वी अन्न उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पे एक समस्या जो भिखारियों की है वो क्यों है समझना चाहिए। अगर जितने लोग भक्ति में लग जाएंगे उतने मांसाहार छोड़ देंगे, और अगर लोगों को भक्ति में लगाना है तो फिर भगवान, जैसे मैं पहले बता रहा था, भगवान के लिए और सुंदर और आलिशान जो है उनकी पूजा होनी चाहिए, तो और लोग भगवान के पास आएंगे और लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो इसलिए यह और भ्रांत धारणा है कि हमें भगवान भुखारियों को भूख मिटाने के लिए हमें भगवान की भक्ति कम करनी चाहिए। नहीं, भक्ति स्तर पर मैं जवाब दिया इसका, सबसे पहले कि भगवान की भक्ति करने से क्या होता है। ऐसे नहीं है कि भगवान के हम कितने जगह पे पैसा खर्च कर रहे हैं। जब मैं सोचता हूँ कि मैं शरीर हूं तो परफ्यूम पे खर्चा करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ मन हूं तो मैं मेरे एंटरटेनमेंट मनोरंजन पे पैसा खर्च करता हूँ, तो ये सारा जो पैसा है वो बच जाएगा और फिर वहां हम समाज की सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीन पॉइंट जो मैं बोला, सबसे पहला कि अगर व्यक्ति धार्मिक बन जाएगा, समाज धार्मिक बन जाएगा, तो लोगों की दानशीलता आएगी, लोगों में स्वार्थ कम हो जाएगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा और फिर उससे भिखारी कम रहेगी। दूसरा बताया, अगर भिखारियों की चिंता है तो सिर्फ भगवान पे जो पैसा खर्च हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कितने सारे और चीजों पे खर्च हो रहा है जो व्यर्थ है उसके बारे में बात हुई। तीसरा बताया कि भगवान पे जो हम भक्ति के जो खर्च करते हैं उससे क्या हो रहा है, उससे लोगों में भक्ति प्रवृत्ति करने में सहायता होती है, और जब भक्ति प्रवृत्ति करने में सहायता होती है तो शाखा तो लोग शराब पीना छोड़ देंगे, मांस खाना छोड़ देंगे और उससे जो अन्न उत्पत्ति बढ़ जाए। तो यह जो भिखारियों और अन्न की कमी का समस्या है यह उसका मूल पे है। तो धर्म के तो दुनिया में भोजन की कमी नहीं है, दुनिया में भजन की कमी है।
अगर आपने जाने तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू आपने दिखाया अभी ये मैंने भी देखा है और ये पूरे मूवी के बाद मुझे एक निष्कर्ष निकला कि ये पूरा मूवी जो है मानव सेवा के ऊपर बताया गया है, नॉट मदर सेवा, और ये पूरा इंटरव्यू उसी पर बताया गया है जिसमें ज्यादातर फोकस दिया है मानव सेवा करने के लिए। मुझे तो इसका थोड़ा बहुत आंसर पता नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत से लोग नए लोग हैं जिनका यही विचारधारा है कि मानव सेवा और मानव सेवा बराबर डिफरेंस नहीं कर पाते, तो मेरा आप बताएंगे अच्छा।
तो मानव सेवा मानव सेवा इनमें से क्या महत्वपूर्ण है, वास्तव में मानव को मानव से जोड़ना ये सर्वोच्च मानव सेवा है। क्या है, मानव को मानव से जोड़ना ये सर्वोच्च मानव सेवा है। मानव सेवा मतलब लोगों को खाना खिलाना या दवाई देना ये अच्छी बात है पर यह सर्वोत्कृष्ट नहीं है। प्रभुपाद जी को जवाब पूछा गया, प्रभुपाद जी ने बताया कि मान लीजिए इसमें पहले बताया कोई बड़े अमीर व्यक्ति का लड़का है वो घूम गया है तो फिर उसको कोई आके दवाई देता है, उसको कपड़े देता है, कोई अन्न देता है, अच्छी बात है। पर अगर उस व्यक्ति को कोई अपने पिता के घर ले जाता है तो उसकी सारी समस्या हमेशा ही हल हो जाती है। लेकिन उसी तरह से जो मानव सेवा है अगर हम सिर्फ शारीरिक स्तर पर करते हैं तो उसे अस्थायी उपयोग होता है, पर जब अगर हम लोगों को भगवान से जोड़ते हैं तो उससे क्या होता है, उससे लोगों का पूर्णतः कल्याण हो जाता है, हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है। और ऐसे नहीं कि अगले जन्म में कल्याण होता है, तो हम मानव सेवा के खिलाफ नहीं है पर ऐसे नहीं कि मानव सेवा ही पर्याप्त है, मानव सेवा महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि माधव सेवा करना होता तो मानव सेवा छोड़ देना है, माधव सेवा करने से भी हम सर्वोच्च मानव सेवा करते हैं। लोगों का कल्याण न केवल आध्यात्मिक स्तर पर होता है पर भौतिक स्तर पर भी होता है। मैंने बताया था कितने सारे लोग हैं जो बुरी आदत से छूट जाते हैं भक्ति करने से तो उसे उनका कल्याण हो रहा है, कितने सारे लोग हैं जो मानसिक स्तर पर चिंतित रहते हैं पीड़ित रहते हैं वह उससे छूट जाते हैं भक्ति करने से, वह भी कल्याण है। इस दुनिया में हम सब जानते हैं क्रोध जो है यह बहुत खतरनाक चीज है, क्रोध में आते हैं ऐसा बोलते हैं ऐसा करते हैं जिससे कि हम बाद में पछताते हैं, लोगों को दुख देते हैं। पर दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो व्यक्ति को क्रोध से मुक्त कर सकती है, क्रोधित होकर चले दवाई को शांत हो जाए ऐसा नहीं। एक ही अगर कोई पागल खाने पर व्यक्ति क्रोध हो जाता है तो क्या करते हैं डॉक्टर, उसको सोने की दवाई देते हैं, फिर बाद में उठता है तो पूरा क्रोध अवश्य होता है। तो भाई जो भगवान की भक्ति है हरे कृष्ण महामंत्र है यह क्रोध से मुक्त करता है, तो क्रोध कम करना क्या यह कल्याण नहीं है, यह भी कल्याण है। अभी जो समाज में तीन प्रधान समस्या है, क्या एक है भ्रष्टाचार है, एक है हिंसा है अलग अलग प्रकार की, और दूसरा है कि बलात्कार से लैंगिक स्तर पर हिंसा जो है। तो अभी ये सब क्यों हो रहे हैं, ये काम लोभ और क्रोध के कारण हो रहे हैं। जो मैथुन राजा हिंसा उसके संबंध में हिंसा बलात्कार वगैरह तो क्रोध लोग काम के कारण होता है, जो लोग युद्ध करते हैं मारते हैं किसी को सब क्रोध के कारण होता है, और जो भ्रष्टाचार लोभ के कारण होता है। जब हम भक्ति करते हैं
कि उसमें काम क्रोध लोभ कम होता है स्वाभाविक रूप से। अभी जो लोकपाल के लिए आंदोलन हो रहा है वो अच्छा है, पर लोकपाल से क्या कर सकते हैं, वो जो लोभी लोग हैं उनको सजा दे सकते हैं, पर लोकपाल आंदोलन से वो लोभी लोगों का लोभ उनको मुक्त नहीं कर सकते। अगर लोभी लोग को लोभ से मुक्त करना है तो उसको लोकपाल नहीं गोपाल चाहिए। भगवान की भक्ति में मुझे आनंद मिल जाएगा तो फिर और चाहिए और चाहिए, लोग जो है इसे छूट जाएगा। इसलिए हम जो भक्ति करने से जो कल्याण होता है वो सर्वांग कल्याण है, आध्यात्मिक कल्याण है, मानसिक कल्याण है और शारीरिक कल्याण है। इसलिए भक्तों का भक्ति का प्रचार करना, भक्ति का अनुष्ठान करना यह सर्वोच्च मानव सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभुपाद। Thank you.